तारीख 9 जनवरी दिन गुरुवार, कार्यक्रम दिन भर के साथ मैं हूँ मानसी दाश। 370 हटने के 5 महीनों बाद जम्मू कश्मीर पहुंचा विदेशी प्रतिनिधिमंडल।
यहाँ एयरपोर्ट से ये सीधे 15वीं कोर के हेडक्वार्टर में सेना के गए, के बाद ये सीधे होटल में गए। वहाँ पे इन्होंने कुछ पॉलिटिशियन से बात की जो हाउस अरेस्ट या जेल में नहीं थे।
हिंसा की शाम कहाँ थे जेएनयू के कुलपति?
मैं इधर ही थे, इन माय ऑफिस ऑन 5th जनवरी। Within the campus, there was no disruption in power supply. If outside the campus, if there was disruption in power supply, we have no control over it, right? So you have to ask the police.
सुनवाएंगे खास बातचीत, होगी बीबीसी के खजाने से खास पेशकश भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। अंतर्राष्ट्रीय राजदूतों का एक प्रतिनिधिमंडल आज भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में भारत में अमरीकी राजदूत समेत अधिकतर लातिन अमरीकी और अफ्रीकी देशों के राजदूत शामिल हैं। कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद दिल्ली में मौजूद राजदूतों का ये कोई पहला दौरा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अभी भी कई राजनेता और व्यवसायी हिरासत में हैं। बुधवार को तेहरान में यूक्रेन के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में यूक्रेन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि जांचकर्ता 4 संभावित कारणों का पता लगा रहे हैं। इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। ओलेक्सी डोनिलोफ ने कहा है कि वो इन कारणों की जांच कर रहे हैं कि क्या ये दुर्घटना मिसाइल हमले या ड्रोन से टकराने या आतंकी हमले या फिर इंजन फेल होना हो जाने से हुई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि दुर्घटना के कारणों का अनुमान लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा,
сегодня я проведу телефонную розмову с президентом Ирана щодо посилення співпраці з українською стороною задля встановлення
सच को स्थापित करने में सहयोग के लिए मैं आज ईरान के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बात करूंगा। कनाडा समेत मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करूंगा कि वो यूक्रेन के बोइंग 737 विमान दुर्घटना के हालातों की जांच करें। इसके साथ ही यूक्रेनी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस और दूसरी घरेलू उड़ानों की सुरक्षा की पूरी समीक्षा की जाएगी। ये थे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के शब्द। ईरान के एक शीर्ष सैन्य कमांडर ने कहा है कि इराक के 2 एयरबेस पर मिसाइल हमले का लक्ष्य अमरीकी सैनिकों की हत्या करना नहीं बल्कि अमरीका की सैन्य मशीनरी को नुकसान पहुंचाना था। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एयरोस्पेस फोर्स के मुखिया अमिराली हजीजादेह ने कहा कि ये हमले एक शुरुआत हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका द्वारा कासिम सुलेमानी के मारे जाने का बदला अमरीकी सेनाओं को मध्य पूर्व से भगाकर पूरा होगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के शाही परिवार ने कहा है कि प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल का शाही परिवार की वरिष्ठ सदस्यता से अलग होना जटिल मुद्दों को उठाता है जिस पर काम करने में वक्त लगेगा। ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स ने यह भी कहा कि वो ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका में वक्त बिताएंगे। बयान में बकिंगम पैलेस ने कहा है कि हैरी और मेगन से इस बारे में हो रही बातचीत शुरुआती चरण में थी। हम एक अलग रास्ता चुनने की उनकी इच्छा को समझते हैं लेकिन ये एक जटिल मुद्दा है और इसे सुलझाने में वक्त लगेगा। प्रिंस हैरी की जीवनी लिखने वाले डंकन लाकम हैरी को विद्रोही किस्म का बताते हैं। वो कहते हैं,
It's still only 20 months since, of course, Harry and Meghan married in front of a TV audience of 2 billion people.
2 अरब टीवी दर्शकों के आगे प्रिंस हैरी और मेगन की शादी को हुए अभी 20 महीने ही हुए हैं और निश्चित रूप से आप उस दिन के बारे में वापस सोचते हैं तो ये बेहद असाधारण लगता है कि वो कितनी जल्दी इस निर्णय पर पहुंच गए कि शाही जीवन उनके लिए नहीं है। ये थे प्रिंस हैरी की जीवनी लिखने वाले डंकन लांगम के शब्द। ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव से 2 दिन पहले विदेश मंत्री जोसेफ वू ने चीन से आग्रह किया है कि अगर वर्तमान राष्ट्रपति साई इंग वेन दोबारा चुनी जाती हैं तो चीन इस द्वीप के मामले में दखल नहीं देगा। उन्हें कहा कि उन्हें डर है कि अगर बीजिंग समर्थक उम्मीदवार को नहीं चुना जाता है तो चीनी प्रशासन सैन्य धमकियों या आर्थिक नीतियों से सजा दे सकता है। उन्होंने कहा कि अगर वो चुनावों के साथ खेल करना चाहते हैं तो उन्हें खुद कोशिश करके अपनी पकड़ बनानी चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन ने जंगलों में लगी आग को लेकर लोगों से नई अपील की है कि वो या तो अपना घर छोड़ दें या फिर आग में फंसने के खतरे को देखें। अधिकारियों ने कहा है कि शुक्रवार को मौसम अधिक गर्म रहने वाला है और शनिवार को तेज हवाएं चलेंगी जो आग के खतरे को बढ़ा देगा जिससे नए इलाकों तक आग फैलने का खतरा है। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया सीमा पर 100 से अधिक जगहों पर अभी भी आग जल रही है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन भर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के करीब 5 महीने बाद आज 16 विदेशी सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचा। एक विशेष विमान में ये प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर जम्मू के श्रीनगर पहुंचा। आज क्या क्या हुआ और प्रतिनिधिमंडल ने किन लोगों से मुलाकात की, जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से और उनसे यही पूछा कि कितना अहम है ये दौरा।
ये विजिट जो है इस दफा इसको बहुत ही सीक्रेट रखा गया, गुप्त रखा गया। जब यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन आया था पिछले साल अक्टूबर में, तो उस वक्त 4-5 दिन पहले ही ये खबर मीडिया में थी और इसकी तैयारी हो रही थी, बड़ा इंतजार हो रहा था कब आएंगे कैसे आएंगे। लेकिन ये अचानक से जो है कल शाम को मीडिया में ये न्यूज ब्रेक हो गई, सोर्स बेस्ड खबर थी, किसी अधिकारी ने इसकी घोषणा नहीं की। तो आज जब ये आ गए तो यहाँ एयरपोर्ट से ये सीधे 15वीं कोर के हेडक्वार्टर में सेना के गए और वहाँ उन्हें उच्च अधिकारियों ने ब्रीफ किया जो यहाँ स्थिति है ग्राउंड पे कश्मीर में और खासतौर से जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सीमा है नियंत्रण रेखा वहाँ पे जो स्थिति है उसके बारे में ब्रीफ किया। उसके बाद ये सीधे होटल में गए, ग्रैंड पैलेस होटल है यहाँ जो पहाड़ी पे है, और वहाँ पे इन्होंने कुछ राज नेताओं से बात की, कुछ पॉलिटिशियन से बात की जो हाउस अरेस्ट या जेल में नहीं थे, क्योंकि ये ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने 5 अगस्त को जब धारा जो अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का निर्णय लिया गया पार्लियामेंट में उसका विरोध नहीं किया था। इसके साथ ही ये कुछ पत्रकारों से भी मिले, कुछ यहाँ के समाचार पत्र जो है उनके संपादक भी उनसे मिले और इसी ब्रीफ इंटरेक्शन के बाद वो चले गए।
इस पूरे दौरे को कश्मीर में कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि अभी भी वहाँ के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो हाउस अरेस्ट में हैं।
जी देखें, कश्मीरियों को तो इस दौरे के बारे में पहले से सूचना थी ही नहीं और वैसे भी इंटरनेट यहाँ बंद है, इसलिए इस बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। एक तो लीडर्स बंद है, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं 3 फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, वो भी बंद हैं, उनके कई साथी बंद हैं और इसके अलावा ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कश्मीर और कश्मीर से बाहर जैसे आगरा है या राजस्थान में बंद हैं या जम्मू में लोग बंद हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, इंटरनेट भी बंद है और लोग भी बंद हैं और किसी तरह कोई राजनीतिक गतिविधि यहाँ दिखाई नहीं दे रही है सिवाय इसके कि 1-2 दिन से कुछ लोग जैसा कि मैंने कहा ऐसे पॉलिटिशियंस जो पीडीपी से अलग हो गए हैं, आज पीडीपी ने बाज़ाब्ता उन्हें निकाला है अपनी पार्टी से, अल्ताफ बुखारी और दूसरे लोगों को जो उनके साथ, अल्ताफ बुखारी पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं महबूबा मुफ्ती के शासन में और उन्होंने ये कहा है कि वो डिमांड करेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो वापस लौटाया जाए, यूनियन टेरिटरी का स्टेटस खत्म किया जाए और जो लोग बंद हैं उन्हें छोड़ दिया जाए और इंटरनेट को बहाल किया जाए।
जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर। इधर आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण को निलंबित कर दिया है। बीते दिनों एक महिला के साथ उनका अश्लील वीडियो चैट सामने आया था जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। इस वीडियो की रिपोर्ट आते ही उन्हें सरकार ने निलंबित कर दिया है। अब से आधे घंटे पहले मैंने लखनऊ में मौजूद हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र से बात की और जाना कि ये पूरा मामला क्या था और क्या इस कदम का बड़ा असर होगा।
जी देखिए, इसमें नोएडा के जो एसएसपी हैं वैभव कृष्ण, उनका पिछले दिनों एक वीडियो चैट वायरल हुआ था जिसे वैभव कृष्ण ने तो फर्जी बताया था, लेकिन उसको राज्य सरकार, क्योंकि ये मामला जब काफी गर्मा गया तो राज्य सरकार ने इसकी जांच गुजरात की एक फॉरेंसिक लैब से कराई। उसकी रिपोर्ट अभी 1 या 2 दिन पहले शायद आई है और उसमें ये पाया गया है कि जो वीडियो था वो सही था, वो फर्जी नहीं था। उसी के बाद वैभव कृष्ण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित किया गया है। ऐसा पहले भी माना जा रहा था कि ये कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है, क्योंकि वैभव कृष्ण का जिस दिन ये वायरल वीडियो वायरल हुआ उसके ठीक अगले दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने राज्य के ही कई आईपीएस अधिकारियों के, जो कि इस समय कुछ जिलों में उनमें से वो लोग एसएसपी और एसपी के पद पर तैनात भी हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक पत्र उन्होंने पिछले दिनों लिखा था डीजीपी को और प्रमुख सचिव गृह को। उस पत्र को उन्होंने मीडिया के सामने उनमें सबका नाम लेते हुए सार्वजनिक किया। अगले ही दिन डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जो वैभव कृष्ण ने ये काम किया है वो सर्विस मैनुअल के खिलाफ है, इसकी जांच कराई जाएगी, अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
जी, लेकिन जिन लोगों के नाम वैभव कृष्णा ने जो सार्वजनिक किए थे, क्या उनके खिलाफ भी कुछ कदम उठाए गए हैं?
जी, उन सारे जो पांचों अधिकारी हैं जिनके नाम इसमें थे, मैं आपको बता दूं कि इनमें एक सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक हैं हिमांशु कुमार, और डॉक्टर अजय पाल शर्मा हैं जो रामपुर के पुलिस अधीक्षक हैं, गणेश चंद्र साहा हैं वो बांदा के पुलिस अधीक्षक हैं, और सुधीर कुमार सिंह है ये गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। इन सभी पांचों लोगों को उनके मौजूदा पदों से हटा करके उनकी दूसरे जिलों में तैनाती कर दी गई है, निलंबित नहीं किया गया है, लेकिन उनको उनके पद से उस जिस जिले में वो तैनात थे वहां से उनको हटा दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो जांच है वो प्रभावित ना हो, सरकार का कहना है। और वैभव कृष्ण का ये जो पत्र था जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए थे, उसकी जांच के लिए भी एक SIT गठित की गई है, जिसमें राज्य के जो DG विजिलेंस हैं हितेश अवस्थी, उनकी अध्यक्षता में SIT इसकी जांच करेगी और उसको 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।
ये जो कार्रवाई है, क्या इसका पुलिस महकमे पर कुछ असर पड़ेगा?
निश्चित तौर पर जब ये मामला सामने आया तो इसको एक तरीके से ये देखा गया कि जो गुटबाजी चल रही है पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर, बड़े अधिकारियों के स्तर पर, वो एक तरह से सतह पे आ गई थी। ये माना जा रहा था कि इसमें एक तरफ वैभव कृष्ण है और उनको भी कई उच्च अधिकारियों का समर्थन मिल रहा है, दूसरी ओर ये अधिकारी जो हैं जिनके नाम लगा आरोप लगाए थे जिनके खिलाफ वैभव कृष्ण ने, उनकी एक अपनी लॉबिंग है। इसके अलावा जो कई वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने भी इसको IPS एसोसिएशन में उठाने की मांग की। अभी कल ही जसवीर सिंह एक ADG स्तर के अधिकारी हैं, हालांकि इस समय वो निलंबित चल रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, ये बहुत ही गंभीर मसला है। तो पूरे पुलिस विभाग में एक तरीके से समझिए कि हड़कंप मचा हुआ था। जब ये अधिकारी स्तर पर इस तरह से गुटबाजी चल रही है तो जो निचले स्तर के अधिकारी हैं और कांस्टेबल हैं, दूसरे पुलिस कर्मचारी हैं, उनके बीच में क्या स्थिति हो रही होगी?
जानकारी दे रहे थे समीरात्मज मिश्र। और अब रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का। 5 तारीख की शाम को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भीतर करीब 50 नकाबपोशों ने घुसकर छात्रों और शिक्षकों को पीटा। इस बीच पुलिस कई घंटे विश्वविद्यालय के गेट पर ये कहते हुए खड़ी रही कि उन्हें विश्वविद्यालय के भीतर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। इस मामले में JNU के कुलपति जगदीश कुमार पर आरोप लगा कि हिंसा की घटना के 48 घंटे बाद भी वो कहीं नजर नहीं आए। BBC संवाददाता नीलेश धोत्रे ने कल शाम JNU में कुलपति के दफ्तर में उनसे मुलाकात की और सबसे पहले यही जानने की कोशिश की कि वो 5 और 6 तारीख की शाम को कहाँ थे।
जो संडे के दिन वाकया हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे, आपको कब पता चला ये?
मैं इधर ही थे, इन माय ऑफिस ऑन 5th January। आई वाज कंडक्टिंग द फैकल्टी सिलेक्शन मीटिंग्स एंड अराउंड 4:30 हमारे पास इंफॉर्मेशन मिला कि about 100 students very aggressively they were moving towards the hostels, and that is when we immediately took the step of sending the security guards there. They followed them to the hostels, aur kuch der ke baad security guards ko pata chala ki students were becoming very aggressive and they cannot control the situation. And we immediately called the police.
तो लेकिन पुलिस लगातार कहती रही जब तक परमिशन नहीं मिलती हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, तो उनका वर्जन ये ऐसा क्यों है? आपने कहा कि आपने पुलिस को बुला लिया था।
देखिए, ये तो एक प्रोसीजरल इश्यू है। जब भी पुलिस एंट्री करना चाहते हैं वो रिटर्न रिक्वेस्ट मांगते हैं, और उस दिन भी हम रिटर्न रिक्वेस्ट बनाया और पुलिस को दिया, लेकिन वेदर पुलिस वेदर
को 8-9 बज चुके थे तभी पुलिस वही कह रहे थे कि हमारे पास परमिशन नहीं है तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे। एक परमिशन मिलने में कितना समय लगता है?
देखिए, ऑलरेडी देर वर पुलिस इन द कैंपस इन सिविल ड्रेस बिकॉज ऑफ द हाईकोर्ट ऑर्डर।
पुलिस पहले से ही सादे कपड़ों में कैंपस के भीतर मौजूद थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि कुलपति और दूसरे अधिकारियों को एडमिन ब्लॉक में दाखिल होने के लिए सुरक्षा चाहिए
ऑन द कैंपस।
जब ये वाकया हुआ आपने कहा आपने पुलिस को फोन किया, आपने किसको फोन किया था?
Usually we contact the police station which is within.
अमूमन हम अपने इलाके में पड़ने वाले वसंत कुंज उत्तर पुलिस स्टेशन से संपर्क करते हैं। हम DCP और ACP से भी बातचीत करते हैं।
तो आपकी DCP से बात हुई थी उस वक्त?
हाँ, सबसे बात हुआ and they assured and yes with police commissioner also I spoke and he assured that.
हमने पुलिस कमिश्नर से भी बात की थी और उन्होंने हमें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया था।
लेकिन कहा जाता है कि जब इंसिडेंट होना था तब मेन गेट के लाइट भी बंद हो चुके थे, उसकी कोई आपको मतलब जानकारी मिल पाई है? कितने लोग लोग अंदर आए थे, देखिए मतलब उसकी कोई जानकारी मिल पाई?
देखिए हमारा कैंपस, विद इन द कैंपस देयर वाज नो डिसरप्शन इन पावर सप्लाई. If outside the campus, if there was disruption in
power, लेकिन अगर बाहर बिजली नहीं थी तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है. इसके बारे में आपको पुलिस से पूछना होगा.
Why there was a disruption in the power supply?
ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है क्या कि अगर आपकी जो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट है उस पर हमला होता है तो उसे मिले, उसे बातचीत करें?
It is not just only my responsibility.
ये केवल मेरा दायित्व नहीं है. यूनिवर्सिटी का एक अपना बड़ा प्रशासनिक ढांचा है. सभी स्तर पर सभी अधिकारी अपना काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
आप उसको कब मिले थे?
Very recently, we had discussions. When we had discussions with the MHRD and we decided on the.
हम हाल में मिले थे, हमने बातचीत की थी मानव संसाधन मंत्रालय से और हॉस्टल फीस वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने एक नहीं बल्कि कई छात्र नेताओं को बुलाया था.
ये थे JNU के कुलपति जगदीश कुमार, जिनसे बात कर रहे थे नीलेश धोत्रे. परसों रात यानी 8 जनवरी को ईरान ने इराक में दो जगहों में मौजूद अमरीकी सैन्य अड्डों पर सतह से सतह तक मार करने वाली करीब 20 मिसाइलें दागी. ईरान ने ये हमले कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए किए, लेकिन अमरीका और इराक का कहना है कि इन हमलों में ना तो कोई अमरीकी और ना ही इराकी सैनिक घायल हुए हैं. जानकारों का मानना है कि ईरान ने हमले में अमरीकी कैंपों को पूरी तरह नष्ट भी नहीं किया है ताकि संकट जो मंडरा रहा है वो नियंत्रण से बाहर न जाए. बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए नवीन नेगी से.
हमले के कुछ घंटों बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस वार्ता में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने के अमरीकी अभियान को सही ठहराया. साथ ही उन्होंने कहा कि वो शांति चाहते हैं.
ईरान has been the leading sponsor of terrorism and their pursuit of nuclear weapons.
ईरान चरमपंथ का बड़ा वित्त पोषक है और परमाणु हथियार बनाने की अपनी जिद के कारण दुनिया के लिए खतरा बन गया है. वक्त आ गया है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस और चीन इस बात को समझें और ईरान के साथ हुए परमाणु करार से बाहर जाएं. हमें ईरान के साथ ऐसे एक करार के बारे में सोचना चाहिए जिससे विश्व को कोई खतरा ना हो.
ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द. अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है कि खुफिया सूत्रों से उन्हें जानकारी मिली है कि ईरान का समर्थन कर रहे विद्रोहियों को अमरीकी ठिकानों पर और हमला न करने के आदेश दिए हैं. पूर्व ब्रितानी राजदूत सर रिचर्ड डाल्टन कहते हैं,
An immediate crisis has been averted, but the situation remains very fragile. The militias in Iran.
एक गंभीर संकट को फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन स्थिति अब भी तनावग्रस्त बनी हुई है. कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद इराक में मौजूद ईरान का समर्थन करने वाले विद्रोहियों ने अपना नेता खोया है. वो गुस्से में है और वो पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में भी नहीं है. ऐसे में ये अच्छी बात है कि ईरान और अमरीका फिलहाल एक कदम पीछे हटे हैं, लेकिन स्थायित्व के लिए दोनों को जल्द बातचीत करनी चाहिए.
ये थे पूर्व ब्रितानी राजदूत सर रिचर्ड डाल्टन के शब्द. बीते शुक्रवार इराक के बगदाद शहर में ईरानी सेना की अहम माने जाने वाली कुद्स सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की अमरीकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी. इसके बाद ईरान ने कहा कि वो इसका बदला लेगा. संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक कहते हैं कि अमरीका और ईरान के बीच तनाव में इराक बेहद अहम है क्योंकि यहाँ अमरीकी सैन्य ठिकाने हैं.
It is important that Iraq not pay the price for external.
हमारे लिए ये देखना बेहद जरूरी है कि दो देशों के झगड़े में इराक का नुकसान ना हो. हम इराक की संप्रभुता का समर्थन करते हैं. हमने अमरीकी राष्ट्रपति का बयान भी सुना और कदम पीछे हटाने का किसी का भी संकेत का हम स्वागत करते हैं. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये तनाव और आगे ना बढ़े.
इस मामले पर पूरे विश्व की निगाहें हैं. ब्रितानी विदेश सचिव डोमिनिक राब कहते हैं कि ईरान 2015 परमाणु करार का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन इस पर कायम रहेगा. जर्मनी, फ्रांस और तुर्की भी मध्य पूर्व के इलाके में किसी तरह के तनाव के खिलाफ हैं. वहीं रूस और चीन ने फिलहाल केवल इतना कहा है कि वो इलाके में शांति और स्थायित्व के पक्षधर हैं.
इधर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मद्देनजर ईरान से बातचीत के लिए तैयार है. और अब वक्त है हमारी विशेष पेशकश का. आज आपको सुनवाते हैं संध्या के दीप सीरीज की कुछ झलकियां, जिसे प्रस्तुत किया था विजय राणा ने. इसका प्रसारण 1998 अक्टूबर महीने में शुरू हुआ था. ये सीरीज समाज और परिवार में बुजुर्गों की स्थिति की कहानी बयान करती है.
तुम कहते उत्तर बेलाय, मैं संध्या का दीप जला।
जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी आजकल कोई पूछ नहीं है, उनकी कोई न तो आवाज का कोई वह है मूल्य है, युवा पीढ़ी उनकी तो देखती भी नहीं है। बल्कि
मीडिया भी बहुत गलत चीज़ है बच्चों के लिए। अभी जितनी भी सीरीज आ रही हैं सब में यही देख लीजिए कि बुढ़ों का अपमान ही किया जाता है, या तो एक कोठरी में डाल दो या अलग पड़े रहो, हमारी सोसाइटी में मत आओ, हमारे संग मत बैठो।
इतना ना बदलाव आए कि लगे ही नहीं कि हम भारतीय हैं।
मैं तो एक बात आपको कहूँगा, जो बुढ़े हो रहे हैं उनको इस बात को फील ही नहीं करना चाहिए कि वो बुढ़े।
मैं संध्या का दीप जला।
ये आवाजें उन लोगों की हैं जो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत के शब्दों में अपने जीवन की उत्तर बेला में संध्या के दीप जला रहे हैं, जो जमाने की तेज रफ्तार, युवा पीढ़ी की पश्चिमी अभिरुचियों और समाज के बदलते मूल्यों के बीच अपनी स्थिति की पुनर्परिभाषा करने का प्रयास कर रहे हैं। संध्या के दीप नामक इस श्रृंखला में हम भारत में पुरानी पीढ़ी की दशा और दुर्दशा पर व्यापक प्रकाश डालेंगे और अपने सजग श्रोताओं के बीच भारत में बुजुर्गों की स्थिति और भूमिका के बारे में एक बहस शुरू करने का प्रयास करेंगे। इस बहस का आरंभिक बिंदु है जनसंख्या विस्फोट से त्रसित भारत में संयुक्त परिवार का विघटन। हम दो और हमारे दो की परंपरा के परिणामों पर टिप्पणी करते हुए भारत के सुप्रसिद्ध जनसंख्या अध्ययन विशेषज्ञ प्रोफेसर आशीष बोस।
मैंने एक सर्वे की कि जानने के लिए ये क्या सोचते हैं। हम तो अपना किताब पढ़ के बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा सामाजिक परिवर्तन कि बूढ़े लोग जो है इसके शिकार होंगे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली टूट रहा और बच्चे कम पैदा हो रहे और इनकम सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन नहीं है और चिकित्सा के लिए बहुत खर्चा बढ़ रहा, तो इनका जो इनकी जो अवस्था बहुत ही खराब होगी।
जनसंख्या अध्ययन की दृष्टि से 60+ यानी कि 60 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के लोगों को बुजुर्ग पीढ़ी में रखा जाता है। भारत में 1991 की जनगणना के अनुसार इस श्रेणी में लगभग 6 करोड़ लोग आते थे और सन 2001 तक इनकी संख्या बढ़कर लगभग 8 करोड़ हो जाएगी। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में परिवार अध्ययन संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर मुरली देसाई।
जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है डिसाइड किया है कि 60 इयर्स 60 साल की उम्र में बदलाव आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी चारों ओर देख रहे हैं, रिसर्च दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोग 70-75 साल तक बहुत ही क्रिएटिव रह सकते हैं, प्रोडक्टिव रह सकते हैं। 60 की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम यंग लोगों को, युवान लोगों को ज़्यादा इंकरेज करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए, तो इसके कारण हमने वृद्धों को एक कैटेगरी में रख दिया कि वो काम के लायक नहीं है। हमारे सेंसस डेमोग्राफर्स उनको सबको डिपेंडेंट बना देते हैं।
बुजुर्ग पीढ़ी के 78% लोग आज भी गांव में रहते हैं, जबकि उनके बच्चे रोजी और रोटी की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं। और जो बुजुर्ग महानगरों के गरीब इलाकों या झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं उनकी स्थिति तो और भी शोचनीय है। प्रोफेसर आशीष बोस ने दिल्ली में 60 आयु के लोगों की स्थिति का एक सर्वेक्षण किया है। उन्होंने पाया कि यदि बूढ़ा व्यक्ति गरीब है तो महानगर में उसकी जिंदगी और भी दूभर है।
उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और वो बोलते हैं अगर आमदनी कुछ न हो, शहर में आप पैसा नहीं कमा सकते, आप वापस गाँव में चले जाओ, किसी तरह से गुजारा करो, बूढ़ा आदमी यहाँ तो बच ही नहीं सकता है।
बड़े शहरों और छोटे परिवारों में बहुत से बूढ़ों की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। ये सही है कि आज बुजुर्ग पीढ़ी के बहुत से लोग अपने आप को असहाय, उपेक्षित और तिरस्कृत अनुभव करते हैं, तो क्या बुढ़ापा एक अभिशाप है? लेकिन सत्य कहीं बीच में है। बढ़ती महंगाई के इस जमाने में एक मध्यम वर्गीय गृहस्थ व्यक्ति के विकल्प अत्यंत मुश्किल है। एक ओर बूढ़े और बीमार माता पिता का बोझ और दूसरी ओर तेजी से बदलते कठोर प्रतियोगी समाज में उसके अपने बच्चों के भविष्य का सवाल। बुलंदशहर की स्थानीय पेंशनर्स एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर के सक्सेना कहते हैं,
सांझी जिम्मेदारी बीच का जो एक प्रोडक्टिव एज ग्रुप है उस पे आके पड़ जाती है, तो नेचुरली उसका जो च्वाइस है वो बच्चे के ऊपर चली जाती है, चूंकि उसे अभी जिंदगी झेलनी है।
तुम कहते उत्तर बेलाए, मैं संध्या का दीप जलाऊं,
और अब चलते चलते सुनते हैं आपकी राय।
आपकी राय। दोस्तों नमस्कार, आज आपकी राय के साथ मैं हूँ सूर्यांशी पांडे। और जब से बीबीसी हिंदी रेडियो सेवा को बंद करने का ऐलान हो चुका है, हमने आपके खतों को आपकी राय में पढ़ना शुरू किया, कुछ इस अंदाज में जहाँ पर हम अपने जवाब नहीं बल्कि आपके जज्बातों को सामने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला खत हम कुमेश्वर कुमार जी का लेंगे, जो धमतरी छत्तीसगढ़ से लिखते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लिखाई में उन्होंने लिखा है, मेरे अंतरंग बीबीसी क्या लिखूं? आपको निवेदन करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने किसी अजीज को सुपुर्दे खाक कर रहा हूं या चिता में सुला रहा हूं। आधी सदी आपका हमराह रहा, इस लम्हे दौर में आप अपनी समय सारणी बदलते रहे, आप जैसे प्रिय के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी अपनी दिनचर्या बदलने को मजबूर होता रहा। रेडियो से हिंदी प्रसारण बंद करने की घोषणा के बाद क्या बचा है? एक पीढ़ी, एक जिंदगी खत्म हो गई। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने की मेरी औकात नहीं। दूसरा खत अयोध्या उत्तर प्रदेश से विष्णु वर्मा लिखते हैं, मुझ जैसे हिंदी प्रसारण के श्रोता अब क्या करेंगे? क्या सुबह शाम की आधे आधे घंटे की दो सभाओं के स्थान पर अपनी व्यवस्था अनुसार एक ही सभा चलाते रहने का विकल्प नहीं चुन सकते आप? क्या हिंदी श्रोताओं की संख्या इतनी घट गई है कि हिंदी प्रसारण ही ठप कर देना पड़ रहा है? पुनः नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करिए। अगला खत राजेंद्र सिंह डोहकी ने लिखा है, चरखी दादरी हरियाणा से, बीबीसी हिंदी रेडियो सेवा बंद करने पर भारी मन से यह लिख रहा हूँ। बीबीसी प्रसारण से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव कैथनपुरवा सातनपुरवा अमेठी उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, बीबीसी हिंदी की रेडियो सेवा बंद होना दुखद है, बीबीसी हिंदी की रेडियो सेवा ना बंद की जाए, अगर बीबीसी हिंदी की रेडियो सेवा बंद हो जाएगी तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। बलिया उत्तर प्रदेश से बिमलेंद्र के सिंह लिखते हैं, बीबीसी हिंदी रेडियो सेवा बंद करने की घोषणा पूर्णतः मजाक लग रही है। हालांकि सार्वजनिक घोषणा मजाक तो नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि बीबीसी के डिजिटाइज्ड फॉर्मेट पर कोई भी आ सकता है, आप समझदार तो हैं, तो आपको क्या बताना कि एक रेडियो का खर्च उठाना जिस व्यक्ति के लिए मुश्किल है, वो भला स्मार्टफोन का खर्च कैसे उठाएगा? गाजीपुर वाराणसी से शेख लिखते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आपके संपादकीय टीम ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? आपको पता होना चाहिए कि अभी भी हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में इंटरनेट की सुविधाएं पूर्णतः नहीं हैं। हरि सिंह सिरसा हरियाणा से लिखते हैं, 13 दिसंबर को बीबीसी एडिटर मुकेश शर्मा ने जो कहा, मैं इसे कभी भी मंजूर नहीं करूंगा। मैं 1995 से बीबीसी सुन रहा हूँ। पहले 4 कार्यक्रम होते थे, फिर 2 हुए, फिर बीबीसी बंद होने जा रहा है इसकी अफवाह आई, पर बीबीसी चलता रहा। मेरे पास एक रेडियो है जो मैंने 1990 में खरीदा था, ना मेरे पास टेलीविजन है, ना मेरे पास इंटरनेट है, ना मेरे पास अखबार आते हैं। मैं सिर्फ दिन भर सुनता हूँ और कोई खबर नहीं, चाहे कितना भी जरूरी काम हो मैं सब छोड़कर पहले दिन भर सुनता हूँ। मुझे विश्वास है राजेश जोशी जी मेरी जरूर सुनेंगे।
और कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर मोहम्मद शाहिद से।
बीबीसी समाचार। अंतर्राष्ट्रीय राजदूतों का एक प्रतिनिधिमंडल आज भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में भारत में अमरीकी राजदूत समेत अधिकतर लातिन अमरीकी और अफ्रीकी देशों के राजदूत शामिल हैं। बुधवार को तेहरान में यूक्रेन के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में यूक्रेन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि जांचकर्ता 4 संभावित कारणों का पता लगा रहे हैं। इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।